हम आप सबको स्वागत करते हैं रविवार के कार्यक्रम में। हम दो दिन के पहले मना रहे थे नरसिंह चतुर्दशी उत्सव। उस समय कुछ दिनों के पहले से मैं पढ़ रहा था प्रहलाद महाराज के चरित्र के संबंध में, क्योंकि हमारे आचार्यगण बताते हैं अगर हम अपने भक्तिमय जीवन में आगे प्रगति करना है, हमारे उच्च कोटि लक्ष्य जो है भगवान की दिव्य प्रेम इसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक बहुत सरल मार्ग है जो भागवत के अंदर ही बताया गया है। ये मार्ग क्या है? द्वादश महाजन जो है उनके चरित्र को हमें अच्छी तरीके से पढ़कर और उनके जीवन शैली को अनुसरण करना, अपने जीवन में उनके अच्छे अच्छे उपदेशों को उतारना, इसके द्वारा हम आगे बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। इसलिए मैं पढ़ रहा था, पहले हम पढ़ रहे थे प्रहलाद महाराज की दिव्य गुणों के संबंध में। उसके बाद प्रहलाद महाराज की अलग अलग उपदेश उन्होंने जो दिया, अब प्रहलाद महाराज के उपदेश उनके पिताजी को क्या दिया उन्होंने, प्रहलाद महाराज के उपदेश उनके गुरुओं को शंडामर्क को उन्होंने क्या उपदेश दिया, और प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को उनके स्कूल के जो राक्षसी परिवार के पुत्र बच्चे थे उनको उन्होंने क्या उपदेश दिया, और उन्होंने अपने पिताश्री हिरण्यकशिपु उनको भगवान नरसिंहदेव प्रकट होने के पहले क्या 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 उपदेश दिया उन्होंने। उसके बाद जब भगवान नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज ने देखा, उनके साथ कैसे बातचीत की प्रहलाद ने, क्या प्रार्थनाएं की, इस तरह हमने इस तरह के पांच वर्ग के चीजों को पढ़ा। ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये पढ़ने से हमें पता चलेगा कि अगर हम भगवान को, भगवान का दर्शन हमें प्राप्त हो जीवन में, तो हमें भगवान को क्या बोलना चाहिए तभी पता चलेगा हमें, है ना। अचानक अगर भगवान दर्शन देते हैं तो भगवान को कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हम प्रहलाद से सीखना चाहिए। अगर ऐसे किसी के पिताजी हो जो भक्ति के विरुद्ध है, ऐसे परिस्थिति में कैसे एक व्यक्ति को जीना चाहिए और कैसे दृढ़ व्रता के साथ भक्ति में स्थित होकर भक्ति मार्ग का अभ्यास करना चाहिए, ये सब हम प्रहलाद से हम सीखते हैं। तो प्रहलाद अपने मित्रों को एक उदाहरण देते हैं कि मैं प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को अनेक चीजों को बताते हैं, खास करके भागवत धर्म के बारे में। उनके मित्र देखते हैं प्रहलाद एक साधारण बालक नहीं है, उनमें ऐसे गुण दिखाई देते हैं जिससे सब पहचान लेते हैं कि ये इसके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, तो सब उनके मित्र लोग उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो उन सबको आश्चर्य हुआ कि प्रहलाद क्यों ऐसा है, क्यों सब लोग जैसा नहीं है। इस दुनिया के सब लोग स्वार्थी होते हैं लेकिन प्रहलाद निस्वार्थ थे। इस दुनिया में लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं लेकिन प्रहलाद हमेशा सारे प्रजाओं के लिए वो पिता की समानता हो, सारे जनसाधारण को। अगर कोई व्यक्ति का उम्र हो 80-90 हो, वो प्रहलाद जो है 5 उम्र का, उसको कैसे पिताजी मान सकता है? लेकिन वो पिताजी के रूप में देखता था उसको, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में इतने प्रगतिशील थे वो प्रहलाद। और अपने वरिष्ठ लोगों को वो भगवान के समान आदर दे देते और समा मित्रों को बहुत प्रेम से उनके साथ व्यवहार करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि वो किसी से ईर्ष्या कभी नहीं करते थे, सबसे प्रेम करते थे, उनके दुश्मन कोई नहीं थे, किसी को नहीं सोचते थे कि ये मेरा मित्र है ये मेरा दुश्मन है, सबको एक समान मानते थे भगवान के एक अंश के रूप में। और ऐसा बताया जाता है कि प्रहलाद महाराज के हृदय में हमेशा एक प्रेम का बाढ़ आता था ऐसे। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं कभी कभी जब लेटे रहते हैं सोते हैं कभी आंख खुलते हैं, आंख खोलते समय कभी कभी हंसते हैं कभी रोते हैं अपने आप। ये क्यों? कभी कभी माताएं बोलेंगे आप सुनेंगे कि भगवान कभी कभी बच्चा को ये कैसे कमल दिखाते हैं तो बच्चा हंसता है, और जब जैसे भगवान अप्रकट होते हैं बच्चा रोता है। लेकिन ये सब बच्चों के लिए लागू नहीं है क्योंकि सब बच्चे ऐसे महाभागवत नहीं है। क्योंकि प्रहलाद महाराज ऐसे महाभागवत थे कि जब भगवान को देखते थे शंख चक्र गदा पद्म के साथ सुंदर दर्शन होता था भगवान के, तो तुरंत उनके चेहरे में मुस्कान आता था। जब भगवान अप्रकट हो जाते थे तुरंत वो रो पड़ते थे, कभी जोर से गाते थे भगवान का गीत। इस तरह का व्यवहार होता था, उनके रोम कड़े हो जाते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसे ऐसे उनके अच्छे अनेक गुण बताए जाते हैं। नारद मुनि जो प्रहलाद के गुरु हैं वो खुद युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि किसी भी सभा में अगर वैष्णव लोग बैठे हैं तो उधर जरूर प्रहलाद की बात होगा ही, जरूर प्रहलाद के बारे में बोले बिना प्रवचन अंत नहीं होगा। इतने प्रहलाद की महत्वता को गुणगान करते हैं। अभी ये बहुत आश्चर्य की बात है क्योंकि गुरु अपने शिष्य के बारे में गुणगान कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को अपने ही शिष्य के बारे में इतना विस्तृत तरीके से युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं ऐसे। तो प्रहलाद के मित्र बहुत आश्चर्यचकित हो गए तो कैसे इस तरह प्रहलाद बर्ताव करता है। तो एक दिन प्रहलाद उनको अनेक अच्छे अच्छे दिव्य संदेशों के बारे में बताता है प्रहलाद उनको सब मित्रों को। उसके बाद उनके मित्र पूछते हैं ये प्रहलाद हम लोग और आप हम दोनों हमारे शंडा मार्ग जो हमारे टीचर हैं उनके नियंत्रण में हैं, और तुम तो राजकुमार हो, तुम हमेशा राज महल में जीते हो, बाहर कभी नहीं आते हो, ऐसे कैसे हुआ कि कोई गुरु नारद मुनि आकर तुमको उन्होंने कुछ सिखाया है, ये सब चीजों को तुमने कैसे सीखा है, ये कैसे तुम इतनी दिव्य बड़े ज्ञानी बन गए तुम, ऐसे वो पूछते हैं बहुत आश्चर्य के साथ। तो प्रहलाद उनको बताते हैं कैसे वो माँ के योनि में थे तब नारद मुनि ने उनको सदुपदेश दिया, उन्होंने अच्छी तरह ध्यान पूर्वक सुना उसको, और नारद मुनि की कृपा के कारण वो अभी तक उसको याद रख पाए ऐसे बताते हैं। उस समय वो एक उदाहरण देते हैं अपने मित्रों को, वो बताते हैं कि ये जियोलॉजिस्ट होता है, और इसे जियोलॉजिस्ट भूगर्भ शास्त्र वो जियोलॉजी, जियोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं शास्त्रज्ञ, ये भू शास्त्रज्ञ है, भूमिका शास्त्रज्ञ जो होते हैं जियोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। वो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पढ़ाई में उनको सिखाया जाता है कि किधर सोना मिलता है उनको पता चलता है, और कभी कभी सोना मिट्टी से मिलकर रहता है, बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ों में आधा सोना होता है और आधा आधा पत्थर होता है, लेकिन उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो ढूंढने का, और ढूंढ कर कैसे पैसा खर्चा करके उन पहाड़ों को तोड़कर कैसे वो सोने को निकालना, और निकाल कर सोने को लेबोरेटरी में लेके जाकर सोने को एक्सट्रैक्ट करना अलग, ये वो लोग जानते हैं। इसके कारण वो लोग पैसा भी खर्चा करते हैं उसके ऊपर, जब एक सोने का खान बोलते हैं उसको, सोने का खान मिल जाता है इसे। इस तरह प्रहलाद महाराज एक उदाहरण देते हैं कि ये शरीर जो है पत्थर के समान है, लेकिन ये शरीर में बैठा हुआ आत्मा क्या है, वो सोने के समान है। वो बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति लोग जो है वो समझते हैं कि शरीर में मूल्य चीज क्या है, आत्मा है, अरे शरीर पत्थर जैसा कुछ काम का नहीं है, वो बताते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जिस तरह वो पैसा खर्चा करके वो सोना को निकालते हैं, उनको मालूम है कि अभी थोड़ा पैसा खर्चा करेंगे तो बाद में सोना मिलेगा जो अनमूल्य है, जिसका मूल्य ही नहीं लगा सकता है, वो करोड़ों रुपया मूल्य, इसलिए पहले पैसा लगाकर उसको निकालते हैं वो खान से। इस तरह बताते हैं अपने मित्रों को बुद्धिमान लोग अपने समय, अपने शक्ति, अपने पैसा सब लगाते हैं किसमें? ये आत्मा को ये शरीर से विछुड़ाने के लिए है, इसको छुड़ाने के लिए, निकालने के लिए, इस तरह बताते हैं। बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरी क्रियाएं कैसे होना चाहिए वो उनको पता होना चाहिए, ऐसे उनको समझाते हैं। तो ये पहले श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं आज, इसमें एक विषय प्रपंच बताते हैं। इधर आधुनिक कलयुग के माताएं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं नास्तिकों के बारे में प्रपंच बता रहे हैं। जो नास्तिक होते हैं लोग, वो माताएं वो मैथुन जीवन ने उनको सुख चाहिए लेकिन बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, बच्चे को अबॉर्शन कर देते हैं, ऐसे मार डालते हैं। हरीश्वरी प्रभु नाम के प्रपंच के एक बहुत प्रसिद्ध शिष्य हैं, जिन्होंने ट्रांसेंडेंटल डायरी नाम के चार किताब लिखा है प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में के संबंध में। आजकल वो बहुत मशहूर हैं, अनेक केंद्रों में जाकर प्रभुपाद जी के बारे में प्रवचन देते हैं वो। उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद मेरे माँ सोच रही थी मुझे अबॉर्शन करने के लिए, मेरे माँ माता और पिता के बीच में बात चल रहा था, मैं जब 4-5 महीने का था तो अबॉर्शन करने वाली थी। प्रभुपाद ने बोला अच्छा हो गया तुम बच गए, इसलिए तुम कृष्ण का प्रचार कर रहे हो सब जगह, ऐसे बता रहे थे उनको। अगर वो अभाषण करती थी तो एक महान भक्त को दुनिया को बताता ऐसे। तो इस तरह कलयुग के नास्तिक माताएं क्या करते हैं, वो बच्चे को अपने गर्भ में गर्भपात कर देते हैं, नहीं तो जन्म देते तो हैं लेकिन जन्म देकर बच्चे को सिखाते हैं स्कूलों में कॉलेजों में किसके लिए, इंद्रिय तर्पण के लिए। इस तरह बच्चे को भौतिक ज्ञान प्रदान करना, नहीं तो इंद्रिय भोग के लिए ज्ञान प्रदान करना भी एक तरह का हत्या है, ऐसे बताते हैं। तो या तो हत्या गर्भपात के द्वारा, नहीं तो बाहर जन्म देने के बाद हत्या, दोनों हत्या ही माना जाता है। जो बच्चे को दिव्य भगवत ज्ञान नहीं दिया जाता है वो हत्या के समान माना जाता है। आप पढ़ेंगे ईशोपनिषद में आत्महा नाम का एक शब्द आता है, हा का मतलब है जो मारने वाला, आत्महा का मतलब है आत्मा को मारने वाला। क्या कोई आत्मा को मार सकता है कोई? आत्मा तो मरता नहीं, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नशेनम, ऐसे भगवान बताते हैं। तुम उसको तलवार से काट नहीं सकते हो, आग से जला नहीं सकते हो, लेकिन आत्मा को कैसे मारा जा सकता है? आत्मा को मारने का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति आत्मा के विरुद्ध काम करता है तो वो आत्मा को मारने के समान है। आत्मा का स्वाभाविक कार्य है भगवान को जानना, भगवान से रिश्ता पुनर्स्थापित करना, उसके विरुद्ध जो काम करता है उसको क्या बोला जाता है, आत्मा। जैसे मानव शरीर में प्रपंच बताते हैं, प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, प्रपंच बताते हैं इधर कि नरक जाने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। प्रपंच बोलते हैं हमें आश्चर्य होगा कैसे ऐसे, तो उदाहरण देते हैं, अगर मांस खाना है तो ये तरकारी शाकाहारी भोजन से मांस का भोजन जो है बहुत महंगा है, इसलिए ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा पैसा खर्चा करके नरक में जाओ, ऐसा है। इस तरह अगर किसी को शराब चाहिए, सिगरेट चाहिए, तो सिगरेट के लिए बड़ा इंडस्ट्री तैयार करते हैं, ये जो तंबाकू जो है, तंबाकू को तैयार करके उससे सिगरेट बनाते हैं। ये तंबाकू का जो खेती होता है इतना दुर्गंध आता है, उधर जो डोंकी गधा भी ज्यादा नहीं, अगर गधा जाता है वो तंबाकू की खेती के पास, वो भाग जाता है उधर से, वो भी भागता है, इतना दुर्गंध आता है, और उसको लेकर इंसान पीता है। ऐसे मनुष्य बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के द्वारा सिगरेट तैयार करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करके शराब के लिए भी खर्चा करते हैं इसे। तो अगर अवैध स्त्री संघ चाहे तो अवैध स्त्री संघ के लिए भी लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं। तो नरक में जाने के लिए हमें बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए सिर्फ एक गिलास में पानी और एक तुलसी का पत्ता, बस इससे भगवान की पूजा किया जा सकता है, प्रभुपाद बताते हैं। तो इस तरह जो लोगों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं है वो आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं, वो क्या बोला जाता है, आत्महा बोला गया है। जैसे अगर किसी को एक सुंदर नया कार दिया जाए और उसको खेत जोतने के लिए यूज करते हैं, वो गलत प्रयोग है कार का। कार को तो सड़क में चलाना चाहिए। तो इस तरह प्रभुज बताते हैं कि बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को क्या करना चाहिए वो समझ आते हैं इधर। द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज एंशियस टू सर्व ह्यूमन सोसाइटी बाई टीचिंग पीपल टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस विच कैन सेव अ ह्यूमन बींग फ्रॉम बींग डिग्रेडेड अगेन टू एनिमल लाइफ। ये कृष्ण भगवान संघ का उद्देश्य क्या है प्रभुज बताते हैं, मानव समुदाय को ये भक्तिमय जीवन के बारे में सिखाना और उनको नीचे की योनियों में पहुंचने से बचाना, ये हमारे संस्था का परम लक्ष्य है। तो इधर से प्रहलाद महाराज शुरू करते हैं अपने शिक्षण को अपने मित्रों को। हम जितना हो सकता है उतना हम देखेंगे उनके श्लोकों के द्वारा क्या उन्होंने अपने मित्रों के साथ चर्चा की। एक्चुअली भारत में ऐसा बताया जाता है कि साधारण एक किसान को भी रिक्शा वाला को भी मालूम है मनुष्य जीवन कितना बहुमूल्य है, उसको मालूम होता है। ऐसे एक बार गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे हैं कि एक कुंभ मेला जब हो रहा था तभी उनको दूसरी दिशा में जाना था रिक्शा में कुछ खरीदने के लिए। तो उन्होंने रिक्शा वाला को मांगा, रिक्शा वाला को बुलाया उन्होंने, क्या मुझे लेके जा सकते हो 4-5 किलोमीटर। तो रिक्शा वाला बोला कि मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ कुंभ मेला में। तो महाराज ने बोला कि मैं तुमको 5 गुना पैसा ज्यादा दूंगा अगर तुम आओगे तो। उन्होंने बोला कि मुझे आप 1000 गुना भी ज्यादा दो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अभी समय आ गया है, इस समय हमें नहाना है। तो महाराज ने पूछा तुमको इसमें इतना विश्वास क्या है, क्यों तुम नहाना चाहते हो? बोले कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है इसलिए हमें जाना है। क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर मैं कुंभ मेला में नहाने के लिए नहीं जाऊंगा तो बार बार मुझे जन्म लेना पड़ेगा मुझे, इसलिए मुझे मोक्ष। तो रिक्शा वाला था वो, उसको भी इतना दृढ़ता था उस धार्मिक का कार्य में। तो महाराज बता रहे थे कि कैसे देखो ये भारत में भारतवासियों को इस बात की मालूमात है कि आत्मा जब ये शरीर में बंधा हुआ है वो बार बार जन्म लेकर वो तकलीफ भोगता है, इसलिए इसको ये जन्म मृत्यु चक्कर को काट कर भगवान के धाम लौटना ही जीवन का लक्ष्य है। ये रिक्शा वाला को भी मालूम है बता रहे थे। तो प्रहलाद महाराज उनको बताते हैं अपने भक्त अपने मित्रों को, वो मित्र तो पूछेंगे कि हमें आप बोल रहे हैं कि तुम भगवान की पूजा करो भगवान के प्रेम करो, भगवान को हम प्रेम क्यों करना चाहिए, ऐसे मित्र पूछ सकते हैं। इसलिए बताते हैं यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृद। 3 चीज बोलते हैं भगवान के बारे में। एक है भगवान प्रिय है बताते हैं, भगवान सब जीवों जिनको प्रेम करते हैं सब जीवों के लिए भी प्रिय है, दोनों साइड में भगवान भी सब जीवों को प्रेम करते हैं और सब जीव भी भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। आत्मेश्वर है बोलते हैं, आत्मेश्वर का मतलब है वो मास्टर, वो मालिक है, वो जीव का मालिक है। सुहृद का मतलब है वो जीव का शुभ चिंतक है। इसलिए वो बताते हैं कि therefore the educational system in the human form of life should be so perfect that one will understand his intimate relationship with God or Vishnu। तो जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को वो प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए कि वो भगवान विष्णु से उनका नाता जो है संबंध जो है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए वो शिक्षा उनको प्राप्त होना चाहिए, यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। देखिए शिक्षा में 2 वर्ग होते हैं, एक है हमारे धंधा, कुछ धंधा सीखते हैं यानी कारपेंट्री सीखते हैं, फिटिंग सीखते हैं, इंजीनियरिंग ऐसे कुछ सीखते हैं इस दुनिया के दुनिया में रहते समय काम करने के लिए, है ना। लेकिन शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, भगवान के साथ प्रेम करना, वो संबंध होना चाहिए। भागवत के अंदर ही बताया गया है कि नव उत्पादी समय ही केवलम, अगर हमारी जीवन हमें भगवान की ओर नहीं लेके जाता है तो वो ऐसे जीवन व्यर्थ माना गया है। भगवान हरि की खुशी के लिए अगर हम जीते नहीं है तो प्रहलाद महाराज जब ये बोलते हैं तो उनके मित्र तुरंत उनको पूछते हैं, ठीक है भगवान हमारे मित्र हैं, शुभ चिंतक हैं, हमारे मालिक हैं, बहुत प्रेम करते हैं हमें, ये सब ठीक है, फिर भी प्रहलाद ये सब ये तुम तो बोलते हो ये सब अभी करने की क्या जरूरत है, ये जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इससे इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत अच्छा सुविधा है, हम इंद्रिय तृप्ति क्यों नहीं कर सकते, हम इंद्रिय तर्पण में मजा आता है आनंद आता है, हमें भगवान की पूजा करने में उतना आनंद नहीं आता है, तो हम इंद्रिय तृप्ति में क्यों हम बिता नहीं सकते जीवन, ऐसे पूछा उनके मित्रों ने। तो उसके लिए क्या प्रहलाद बताते हैं, सुखम इंद्रियकं दैत्य देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। हे मित्रों ये बताते हैं कि इंद्रिय तर्पण जो है वो कुत्ते बिल्लियों को भी मिल जाता है बहुत आसानी से, तुम्हें बहुत संग्राम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र लभ्यते दैवात् बताते हैं, दैवात् का मतलब है दैव जो है उसने आयोजन किया है हर एक जीव को क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, ऐसे जैसे जो सुअर है वो विष्ठा खाता है लेकिन विष्ठा खाने में उसको बहुत मजा आता है, उसको बहुत आनंद आता है, हम हलवा खाते हैं तो द्रौपदी जी बोलते हैं अगर हम हलवा को लेकर सुअर को खिलाते हैं वो सूंघेगा हलवा को और समझेगा कि विष्ठा नहीं है तो सर मुड़कर चला जाएगा, वो खाएगा नहीं वो, क्योंकि उसका जिह्वा जो है ऐसे प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है कि वो विष्ठा से ही संतुष्ट होता है, वो ऐसा उसका जीवा बनाया गया है उसका है? और उसका नाक भी ऐसा बनाया गया है विष्ठा को सूंघने से उसको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विष्ठा सूंघता है तुरंत भाग जाता है उधर से है? तो इसलिए वो बताते हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोर्ड प्लेजर बोलते हैं, स्टोर्ड प्लेजर का मतलब क्या है, हर एक जीव को कितना सुख मिलना चाहिए वो ब्रह्म लिपि में लिखा है जन्म के समय ही उतना ही हमें सुख मिलेगा, उससे थोड़ा भी ज्यादा मिलने वाला नहीं है। जैसे हम देखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में पुणे रेलवे प्लेटफॉर्म में कभी कभी कुत्ते सो जाते हैं, अगर वो लेट कर आंख बंद कर दिया और हम लोग हम अपने घर में एक बहुत अच्छे मुलायम बिस्तर में लेट कर हम आंख बंद करते हैं, दोनों लोग आंख बंद करने के बाद कुछ फर्क है कुत्ते के सोने में और हमारे सोने में, क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं है, सोकर दूसरे दिन उठते हैं दोनों ने सोया है इसमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो सोने में जो सुख है वो जिसको सोने का सुख भगवान देना चाहते हैं उसको ही देते हैं, कुछ लोग जितना भी अच्छे मुलायम बिस्तर में सोए उनको नींद नहीं आता है ना, इस तरह खाने के लिए भी जितना हमें मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाला खाना, इस तरह प्रहलाद ने बताया कि मित्रों आपको जिस तरह दुख जो है तुम्हारे जीवन में पूछे बिना आता है, कोई मंदिर में जाकर भगवान को बोलता नहीं है भगवान हमेशा आप मुझे सुख दे दो थोड़ा दुख भी दे दो, दुख देने से थोड़ा सुख अच्छा लगेगा मुझे, ऐसा कोई मांगता नहीं, हम में से कितने लोग हैं इधर हम हमें मांगने के बाद हमें दुख प्राप्त हुआ, कोई है इधर आप में से कोई है जो दुख मांगते हैं दुख की याचना करते हैं, हम दुख से डरते हैं दुख से हम दूर भागना चाहते हैं, दुख छोड़ता नहीं है वो पीछे करता है, इस तरह वो बताते हैं कि दुख जिस तरह अपने आप आ जाएगा तुम्हारे जीवन में ऐसे सुख भी आ जाएगा, जो तुम्हारे तकदीर में लिखा है वो आ जाएगा, चिंता मत करो तुम इतना संग्राम मत करो, थोड़े प्रयत्न से जो हमें प्राप्त होना है वो प्राप्त हो जाएगा, सर्वत्र लभ्यते दैवात्। तो उन्होंने बोला कि देखो हर योनि में वो ही सुख प्राप्त होता है, जैसे कभी कभी आप इस तरह का प्रवचन दो कभी कभी माँ बाप बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हो हमेशा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आपको मालूम नहीं हम लोग कितना जिम्मेदारी लेते हैं बच्चों को बड़ा करते हैं, आप देखेंगे शेर और बाघ भी बच्चों को बड़ा करते हैं, वो भी आप देखेंगे कोई बोलेंगे नहीं नहीं हमने बच्चों को स्कूल में भेजा है पढ़ाई किया है बच्चों को हमने सिखाया है हमारे बच्चों को कैसे इस दुनिया में जीना, ये तो स्पर्धा का दुनिया है आजकल जीना भी मुश्किल है नौकरी मिलना इतना मुश्किल है, हमने बड़ा करके बच्चों को ऐसे सिखा है कि कैसे इस दुनिया में जी सकते हो, आप देखेंगे बाघ जो है शेर जो है वो भी सिखाते हैं अपने बच्चों को कैसे शिकार को पकड़ शिकार करके कैसे शिकार को पकड़ना वो भी सिखाते हैं, आप देखेंगे कभी कभी टेलीविजन में अफ्रीकन सफारी में दिखाते हैं बाघ नहीं तो शेर अपने बच्चे के साथ बच्चे को आगे करता है बोलता है तुम भागो पकड़ो वो हिरन को, वो ट्राई करता है कभी मिस हो जाता है और माता पिता उसको थोड़ा लाफा देते हैं बोलते हैं अगले बार जल्दी से भागो, आप देखेंगे वो सिखाते हैं वो भी क्यों सिखाते हैं? उनको मालूम है कि हम बाद में बूढ़े हो जाएंगे तभी बेटे को बेच सकते हैं, वो करेंगे ऐसे तो वो भी सिखाते हैं ऐसे, ऐसे नहीं कि वो सिखाते नहीं है, वो भी सब करते हैं। कभी कभी कोई बोलते हैं क्या प्रभु जी आपका मालूम नहीं है हमारा कॉलोनी देखना चाहिए आपको, कितना सुंदर कॉलोनी है, कितना सुंदर घर बनाया हमने है, कितना बड़ा बड़ा मकान बंगलो बनाया है। तो वो भी जानवर भी बनाते हैं, अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, जैसे एक वीवर बर्ड नाम का एक पक्षी है, उतना बहुत अच्छा घोंसला बनाता है, वो सर्दी में गर्मी में सब मौसम में वो बहुत अच्छी तरह जी सकता है वो ऐसे। तो प्रहलाद बता रहे अपने मित्रों को कि हर एक योनि में हमने वो ही काम किया है। क्या किया है आप देखिए, ये चिड़िया जो है जल्दी जब सुबह उठता है आवाज करता है चौं 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 सुबह, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक घूम घूम कर क्या करता है, कुछ खाने के पदार्थों को लेके आता है, शाम खाने के बाद घोंसले में अपने बच्चों को देकर वो सो जाता है। तो इस तरह खाने के पदार्थ लाना और मैथुन करके बच्चों को पैदा करना और इस तरह सो जाना, और सोते समय भी डर है क्योंकि कभी कभी चील आकर खाने के लिए, चील आ जाता है, दुश्मन प्राणी आ जाते हैं पकड़ने के लिए, उनके साथ लड़ाई करते रहना है, ये जानवरों का पक्षियों का जीवन है। हतालत ने बोला कि यही चीज हर योनि में हमने कर किया है। अभी मनुष्य होने के बाद भी वही कार्य हम क्यों करें, ऐसे पूछा उन्होंने। सर्वत्र लभ्यते दैवात, बोला उन्होंने, अरे दैव के अनुसार जो तुमको मिलना है आसानी से मिल जाएगा। प्रभु जी बताते हैं जंगल में पक्षियां जो ये फल खाते हैं पेड़ों से, वो इतना फल होता है, इतना फल होता है जंगल में, वो अनेक फल भूमि में नीचे गिर के रहता है ऐसे, कोई उसको लेकर खाते भी नहीं है, ऐसे सड़ता जाता है वो, इतना भगवान के राज्य में इतना खाने के पदार्थ मिल जाते हैं। और प्रभु जी बताते हैं ये चिड़िया और जानवर एक कॉलेजों में जाकर डिग्री भी प्राप्त नहीं किया है फिर भी खाने को मिल जाता है इनको, इन्होंने इंजीनियरिंग मेडिकल कुछ लिया नहीं है, सब प्राप्त हो जाता है उनको, यथा दुखम अयत्नतः। तो आप बोलेंगे प्रभु जी अगर डिग्री की जरूरत नहीं है तो इस दुनिया में सब लोग कॉलेज स्कूल में क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ताकि उनको नौकरी प्राप्त हो और खाने के पदार्थ प्राप्त हो। अगर इन सब लोगों को विश्वास हो कि भगवान खाने के पदार्थ आयोजन करेंगे, वो विश्वास का ही जरूरत है, बस हम विश्वास के साथ हम भगवान के कार्य करें भगवान सब भेज देंगे। क्योंकि हमें उतना विश्वास नहीं है इसलिए हमें कुछ और भी योग्यताओं को इकट्ठा करने की जरूरत है, ताकि हम कुछ अपने अपने ऊपर हम बलबूते पर हम निर्भर रहे ऐसे, इसलिए कुछ धंधा भी रखा है ऐसे। तो प्रहलाद ने उनको बोला कि सुखम इंद्रिय कम दैत्य, इंद्रिय सुख के पीछे मत पड़ो, ऐसे अपने मित्रों को सिखाया। ये कितना कठिन बातें देखिए, ये सब असुरों के पुत्र हैं जो असुरों के परिवार में जन्म लिया उन्होंने, उनको जाकर प्रचार कर रहे हैं प्रहलाद, बहुत कठिन बात है। क्योंकि असुरों के परिवार में जन्म हुए बच्चे उनके पास बहुत से ऐशाराम है, सुख सुविधा है उनके जीवन में, उनको सब अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ मिलते हैं, सोने के लिए अच्छा व्यवस्था है, अच्छा ऐशाराम है सब कुछ, ऐसे बच्चों को भी ऐसे प्रचार कर रहे हैं। देह योगेन देही नाम, हर एक शरीर के अनुसार उनको जो मिलना है वो मिल जाता है, इसलिए उसके लिए तुम संघर्ष मत करो, ऐसे उन्होंने सिखाया, उसमें तुम समय की बर्बादी मत करो। तो उन्होंने बताया कि तत्प्रयास न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम। तो उनके मित्र ने पूछा ठीक है आप बोल रहे हो कि इंद्र देव जी के पीछे मत पड़ो, संघर्ष मत करो, तो अगर तुम विष्णु की पूजा करोगे तो तुमको क्या प्राप्त होने वाला है, ऐसे पूछ सकते हैं ना उनके मित्र। तो उसके जवाब में उन्होंने क्या बताया, क्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम, अगर तुम विष्णु की पूजा करोगे तुमको क्षेम प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, भगवान की धाम प्राप्त होगा, लेकिन तब प्रयास हो न कर्तव्य हो बोलते हैं, लेकिन भौतिक प्रयास को तुम मत करो। क्यों? भौतिक प्रयास से क्या प्राप्त होता है वो बताते हैं, भौतिक प्रयास से तुम्हें क्या है, थोड़ा इंद्रिय तर्पण प्राप्त होगा, थोड़ा पैसा प्राप्त होगा, लेकिन ये दोनों के बारे में बताते हैं कि उससे क्या है, समय की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी होता है और अंत में ये नश्वर है, सब मिट जाता है। प्रभु जी तात्पर्य में लिखते हैं, वी सी मेटलिस्टिक पर्संस बिजली एंगेज्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल डे एंड ऑल नाइट ट्राइंग टू इंक्रीज देयर मटेरियल ऑपुलेंस, बट इवन इफ यू सपोज दैट दे गेट सम बेनिफिट फ्रॉम सच एंडेवर्स दैट डज नॉट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ देयर लाइव्स, नॉट डू दे नो व्हाट द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज, People consider the body to be everything and they are trying, engaged in trying to keep the body materially comfortable. Prabhupada बताते हैं ये लोग जो हैं अपने शरीर को सर्वस्व मानते हैं, उनको मालूम नहीं कि ये शरीर में आत्मा बैठा है। लोग क्या मानते हैं अपने को? शरीर, ये देह मानते हैं देहात्म बुद्धि के कारण। जैसे हमने पहले आपको उदाहरण दी थी ये सोना और पत्थर की, पत्थर और सोना एक ही पहाड़ में मिलते हैं, लेकिन बुद्धिमान जो जियोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, उसको अलग करता है वो सोने को वो पत्थर की पहाड़ से, और उसको मालूम है कि ये पहाड़ में पत्थर है, ये पत्थर में ये सोना है, इसलिए पैसा खर्चा करके वो पहाड़ को तोड़कर वो सोना को निकलता है वो है। इस तरह बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, प्रहलाद बताते हैं कि उनको मालूम है कि ये शरीर का सार क्या है, आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर तो मृत है, उसको काट सकते हैं जला सकते हैं, कुछ मतलब ही नहीं है उस शरीर का। लेकिन आत्मा जब है, बहुमूल्य आत्मा है, इसलिए आत्मा के लिए समय बिताना, आत्मा के लिए शक्ति को बिताना है, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है, ऐसे बताते हैं। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, अपने को शरीर मानते हैं, प्रभु बताते हैं इधर है? और वो भौतिक ऐश्वर्य आराम को बढ़ाने में वो अपने सारे समय को बिताते हैं, शक्ति को बिताते हैं है? तो प्रहलाद महाराज ऐसे प्रयत्न करते हैं उनको समझाने के लिए है? कि तुम भौतिक प्रयास मत करो। और वो बताते हैं उनके मित्रों को कि तुम्हारे पास दो स्पेशल योग्यताएं हैं, क्या है? ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम्। पुष्कलम का मतलब है मोटा शरीर। जब तुम्हारा शरीर मोटा और तंदुरुस्त है और साथ साथ और एक योग्यता है कुशल है, जब तुम्हारा बुद्धि तीक्ष्ण है और समझ सकता है कि क्या मेरे लिए हितकारक है क्या हानिकारक है, इस तरह तुम्हारा बुद्धि समझ सकता है। दो योग्यताएं हैं, मोटा शरीर और तीक्ष्ण बुद्धि, ये दोनों तुम लोगों के पास है, ऐसे प्रहलाद महाराज बताते हैं। जब ये दो चीज है तुम्हारे पास, तभी क्या करना चाहिए, तुम्हें जीवन के श्रेयस जो है अंतिम लक्ष्य जो है उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन मन मनुष्य क्या करता है, मोटे शरीर से इंद्रिय तृप्ति करता है, इसलिए वो अगले जन्म में वो जानवर बनता है, ऐसे प्रभु बताते हैं। जब शरीर तंदुरुस्त होता है उसको तुलना किया जाता है ये एक हरा भरा हरियाली पेड़ के साथ। पेड़ जो होता है जब हरा भरा होता है तभी इतना बीजों का वर्षा करता है वो, और वो सब बीज नीचे गिरने के बाद वो एक एक पेड़ उग जाता है उधर से, लेकिन सूखने के बाद ये पेड़ मर जाता है, लेकिन वो मरने के बाद इतने पेड़ उग जाते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, अपने तंदुरुस्त अवस्था में युवक अवस्था में इतने पाप कर्म करते हैं, वो पाप कर्म के कारण पाप कर्म बीज बन जाता है और वो बीज हमारे पीछे करते हैं अगले जन्म में, और पीछे करके हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं और उन शरीरों में व्याधि दुख सब प्राप्त होते हैं। इसे इसलिए बताते हैं कि जब शरीर तंदुरुस्त है तभी वो बताते हैं कि तभी भगवान के स्मरण के द्वारा तुम पाप कर्म से ऊपर उठ जाओ, ऐसे बताते हैं। नहीं तो पाप कर्म करोगे तो अगले जन्म में वापस दुख भोगना पड़ेगा, ऐसे बताते हैं। और कुशल है बोलते हैं, कुशल मतलब तुम तो बुद्धिमान हो, तुम समझ सकते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरह वो समझाते हैं उनको। भय आश्रित बताते हैं, इस दुनिया में सब लोग डर में रहते हैं, तुम इस डर से तुम ऊपर उठ सकते हो, ऐसा बताया। फिर भी उनके मित्रों ने बोला कि ठीक है प्रहलाद, तुम जो भी तुम बोलते हो सब अच्छा है, तुम अच्छे बात बोलते हो कि हम अगले जन्म में हम जानवर नहीं बनना चाहिए, हमें अच्छा अच्छा ऊंचा जन्म प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हमें मोक्ष के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मोक्ष तो दूर की बात है, अभी हम तो छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चे बच्चों को इसके बारे में इतना चिंता करने की क्या जरूरत है। हम बूढ़े होने के बाद मृत्यु के कुछ समय के पहले हम भगवान का आश्रय ले लेंगे, तभी हम भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अभी तो खेलने का कूदने का समय है, ऐसे बताते हैं उनके मित्र। तो उस समय प्रहलाद क्या बोलते हैं उनको, ठीक है मैं आपको सारे जीवन का एक क्या बोलते हैं, आई विल शो यू योर कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर एंटायर लाइफ, आपको सारे जीवन के एक मनुष्य के जीवन के बारे में बताता हूँ। प्रहलाद बताते हैं कि उसके पहले 10 साल बच्चे क्या करते हैं, वो उनको मालूम भी नहीं है कि दुनिया क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे बेवल्डरमेंट बोलते हैं। व्हाट इज अ बेवल्डरमेंट? ब्रह्म, ब्रह्म में उनका जीवन चला जाता है। आप लोग जरा सोचिए, आपके पहले 10 साल आपने कैसे बिताए, हमें याद भी नहीं है, हमें है ना, हम भूल जाते हैं। पहले 10 साल अपने जीवन में हमने कैसे बिताया, वो समय तो चला जाता है। बच्चे बच्चे अपने मन से इतना आइडेंटिफाई करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, इधर उधर जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं जीवन कैसे चलता है। पहले 10 साल भाग जाता है वो, और बताते हैं अगले 10 साल खेल कूद में चला जाता है। इस तरह 20 साल गया, और बताते हैं कि अंतिम 20 साल जो है 90 और 100 है, तो लास्ट 20 साल जो है वो कैसे चलता है। आदमी व्याधि में पड़ा रहता है, बिस्तर में लेटा रहता है, व्याधि के कारण उतना दर्द होता है शरीर में, उसको उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, खांसी होता है उसका है, कभी भी मृत्यु आ सकता है, डर में रहता है वो ऐसे। वो कभी कभी मलमूत्र भी बिस्तर में कर लेता है ऐसे है। ऐसे ऐसे जीवन बहुत कठिन जीवन है, वो 20 साल चला जाता है ऐसे। कितना गया अभी? 40 गया, और बाकी कितना है? 60 है। ये 60 में बताते हैं अगर कोई व्यक्ति आलसी व्यक्ति है तो दिन में 12 घंटा सोता है, इसका मतलब है अभी उसमें भी 30 साल चला गया, बाकी क्या बचा है? 30 साल बचा है। तो बताते हैं अरे मित्रों समझो, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में 100 साल है, लेकिन 100 साल नहीं, कितना है? सिर्फ 30 साल है तुम्हारे जीवन में बस। और अगर कोई व्यक्ति 1 साल नहीं जीता है, अगर व्यक्ति सिर्फ 70-80 साल जीता है, तो वो 30 भी और भी कम हो जाएगा वो, और वो भी 10-15 हो जाएगा वो भी। तो बहरहाल महाराज बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये 10-15 साल जो है 20 साल उसको कम से कम तुम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो, ऐसे बताते हैं। और बताते हैं उनको कि लेकिन उस 30 साल जो बचा है उसको क्या करता है मनुष्य, वो बताते हैं। वो भी उधर प्रभु जी बताते हैं, हु इज ऑर्डिनरी गृहस्थ, हु इज अ ट्रेन्ड गृहस्थ। प्रभु जी बताते हैं, ये तात्पर्य है, आप लोग पढ़ सकते हैं 7.6.9, बहुत इंपॉर्टेंट परपोर्ट है। 7.6.9 तो हम जरूर जाना चाहते हैं, ऑर्डिनरी गृहस्थ कौन है और ट्रेन गृहस्थ कौन है। प्रभा जी क्या बताते हैं देखिए, वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट शुड यूज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ भक्ति योगा धर्मान भागवतान मीन्स रिवाइविंग अवर रिलेशनशिप विद गॉड। For this purpose, Krishna personally advises, Sarva Dharman Parityajya. While in the material world, we manufacture so many duties in the name of so many isms, but our actual duty is to free ourselves from the cycle of birth and death, old age and disease. Prabhupada ji batate hain, ye jivatma ka ek hi homework hai, ye duniya mein. Kya hai homework? Kisi ko malum hai? Jab hum Bhagwan ke daam chhod kar duniya mein aate hain, हमें एक ही कार्य है इस दुनिया में, क्या है? जैसे प्रभु जी उदाहरण देते हैं, जेल खाने में ये जेल में रहने वालों को खाना भी दिया जाता है, कपड़ा भी दिया जाता है, सोने के लिए भी स्थान दिया जाता है, डॉक्टर भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है उनको, लेकिन उनसे एक ही अपेक्षा की जाती है जेल खाने में रहने वालों को, चोरों को क्या अपेक्षा करते हैं पुलिस लोग? अपने गलत बुरे आदतों को छोड़ दे, वो सुधारे, वो ही एकमात्र लक्ष्य है जेल खाने का। इस तरह हम जब इस दुनिया में आते हैं, एक ही लक्ष्य है जो हम भगवान के शरण में थे, लेकिन शरण को छोड़कर इधर आया है, क्यों? खुद अकेले भोगने के लिए। तो भोग करने की प्रवृत्ति को त्याग कर भगवान की दिव्य भक्ति में जोड़ना, यही एकमात्र कार्य हमें करना है बस। लेकिन हम देखेंगे, प्रभुज बताते हैं, सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में हम नए नए जिम्मेदारियों को हम ले लेते हैं। जैसे ये एक व्यक्ति थे, हमारे मंदिर में आए थे, मुझे मिलने के लिए मिला। उन्होंने बोला कि कब जब हमने गवर्नमेंट कंपनी में काम करता था, अभी हमारा रिटायरमेंट हो गया, 60 हो गया, इसलिए रिटायरमेंट हो गया, अभी अभी हम घर में रहते हैं, कुछ काम करने के लिए नहीं है, कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या बिजनेस, अच्छा बोलिए। ऐसे पूछा, मेरे पास 2-3 आइडिया है, मैं टेक्सटाइल बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, नहीं तो गाड़ी चलाने का बिजनेस, ट्रक का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। ऐसे 2-3 बिजनेस आइडिया दे रहे थे मुझे। बोला कि आप एक आइडिया बोलिए। मैंने बोला मंदिर ज्वाइन कर लीजिए। बोला मैंने बोला आपका 60 उम्र हो गया, अब आगे जाकर आपका नया बिजनेस शुरू करने की क्या जरूरत है। देखिए ये सफेद बाल आता है वो मृत्यु का नोटिस है, क्योंकि वो नोटिस देता है कि हे शरीर बूढ़े हो गया, कभी भी हमें छोड़ना पड़ेगा शरीर, तैयार हो जाओ, सतर्क हो जाओ, उड़ जाओ। भागवत ने बताया गया है कि एक आदमी था, किसी व्यक्ति ने बोला उसको, देखो ये खेती जो है अभी फसल निकालने के समय आ गया है, लेकिन तुम इधर ही खड़े रहो, देखो कुछ बैल गाय कुछ इधर आएंगे तो तुम उसको देख लो। ऐसे बोला उसने। वो बोला ठीक है मैं देख लूंगा। तो खड़ा रहा वो, कुछ समय के बाद बैल आ गया, गाय आ गया, सब वो खेती को खाने लगे, वो देखता रहा ऐसे। उसके बाद आया था वो आदमी, अरे तुमको बोलकर गया ये सब खा रहे हैं, क्या तुमने देखा नहीं? बोला क्या देख रहा हूं। उसने डांटा उसको, अरे मूर्ख, देखने का मतलब क्या है, उनको रोको, है कि नहीं? तो इसको भागवत में क्या बोला गया, पश्यन्ति न पश्यति, देखने के बाद भी लोग देखते नहीं। ऐसे अगर हम सड़क में चल रहे हैं, पीछे एक ट्रक आ रहा है, कोई मित्र बोलता है ट्रक का आवाज आ रहा है, हाँ ठीक है आवाज आ रहा है, हम बोलते हैं लगता है कि ट्रक पास में आ गया, हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, हाँ हॉर्न भी सुनाई देता है मुझे। अगर सड़क के बीच में जा रहा है वो, अरे ट्रक आ गया पास में, तुमको मारने वाला है अभी, इसके बाद भी अगर कोई साइड में नहीं भागेगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा वो ट्रक में, है कि नहीं? इसलिए शास्त्र जो चेतावनी देते हैं हमें, उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि लोग ऐसे, ये सुनने के बाद भी लोग इस दुनिया में हमेशा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, बोलते हैं कि हमें इतने जिम्मेदारी है। जैसे आपने ये कैलाश का कहानी सुना है, वो कैसे वो बिजी था, ऐसे लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। इस दुनिया में काम जो हम करते हैं उसका अंत ही नहीं है। इसलिए शास्त्र क्या बताते हैं, लाभो जीवे तयावता, इस दुनिया में तुम इतना ही काम करो जो आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए जितना जरूरत है उतना ही काम करो, बस बाकी समय तुम भगवान के लिए बिताओ। तो वैदिक संस्कृति का मतलब है, जैसे इधर पीछे प्रभा जी लिखते हैं इसी तात्पर्य में, ये ब्रह्मचारी इज एडवाइज्ड टू गो डिगिंग आर्म्स डोर टू डोर addressing all women as mother and whatever he collects goes to the benefit of guru. In this way he learns how to control his senses and sacrifice everything for guru. ये एक ब्रह्मचारी सीखता है कैसे वो भिक्षा मांगना और सब स्त्रियों को माता करके पुकारना, और इस तरह का प्रशिक्षण उसको प्राप्त होता है कि वो इंद्रियों का संयम करे और उसके सब जो भी प्राप्त होता है उसको गुरु के लिए त्याग करे। ये ब्रह्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। When he is fully trained, if he likes, he is allowed to marry. अगर वो पूरे प्रशिक्षण होने के बाद अगर शादी करने की इच्छा है उसको तो शादी कर सकता है। Thus, he is not an ordinary grihastha who has learned only how to satisfy his senses. इसलिए वो साधारण गृहस्थ के समान नहीं है जो अपने सिर्फ इंद्रिय को पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करता है। ये ट्रेन्ड गृहस्थ can gradually give up household life and go to the forest to become increasingly enlightened in spiritual life and at last take sannyas. एक प्रशिक्षित गृहस्थ ऐसे हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने पारिवारिक जीवन से धीरे धीरे वानप्रस्थ में जाते हैं और वानप्रस्थ के बाद वो सन्यास ले सकते हैं, ऐसे बताते हैं। तो वो ट्रेन्ड गृहस्थ बोलते हैं प्रभुपाद जी है? और ऑर्डिनरी गृहस्थ किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ अपने इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखिए बच्चा माँ बाप के साथ जाता है मार्केट में, कभी बच्चा देखता है वो चिल्लाता है मुझे वो चॉकलेट चाहिए, जो है वो मुझे चाहिए, 5-star चॉकलेट, बड़ा चॉकलेट माता मुझे दीजिए। और माता जी बोलते नहीं नहीं तुम्हारा दांत गिर गया है, तुम्हारे दांत में कीड़ा गया है, इसे तुमको खाना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चा क्या करता है, कभी कभी जमीन में बैठकर हाथ पैर हिलाकर चिल्लाता है, रोता है। इसको अंग्रेजी में क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मगरमच्छ का आंसू। तो ऐसे रोता है, तो माँ बोलती है पिताजी को, देखिए इतना रोता है बच्चा, उसको रोने मत दीजिए, वो खरीद कर दे देती है बच्चे को। तो बच्चा क्या करता है, वो कहता है, और भी उसका समस्या बढ़ जाता है। तो ये क्या है, इस तरह माँ बाप जो है बच्चे के दास बन जाते हैं, है ना। जिस तरह बच्चा जो है माँ बाप को नचाता है, वो इस तरह हमारे इंद्रिय भी हमको नचाते हैं। इंद्रिय जो है वो डिमांड करते हैं, तो वो हमें नचाते हैं। जैसे इस दुनिया में ऐसे ब्रह्मचारी के बारे में बोला गया है कि अगर किसी को ब्रह्मचारी ट्रेनिंग दिया गया है पहले, जैसे हमारे विद्यार्थी जो सब कॉलेज में आते हैं वो साथ में रहते हैं भक्तों के साथ, तो सुबह 3-3:30 बजे उठते हैं, उसके बाद मंगल आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, सोलह माला जपते हैं। और क्योंकि वो ब्रह्मचारी लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, इसके कारण क्या करते हैं, वो भी ब्रह्मचारी लोग छठे में सोते हैं, ये भी विद्यार्थी भी छठे में ही सोते हैं, एक सरल छठे में सोते हैं वो भी, और सरल भोजन सरल प्रसाद खाते हैं, और इंद्रियों को संयम करते हैं, सब स्त्रियों को माता के रूप में देखते हैं, और इस तरह के 4 नियमों को पालन करते हैं। तो ऐसे हजारों बच्चे हैं सारे भारत में, हजार से ज्यादा बच्चे हैं ऐसे, सब करते हैं इस तरह। तो ये करने से क्या होता है, इंद्रियों को संयम करने से, मन और इंद्रियों को, और 4 नियम पालन करने से एक व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। और उस शांतिमय अवस्था में जो भगवान का नाम लेता है उसको हायर टेस्ट मिल जाता है। हायर टेस्ट का मतलब है ऊंचा स्वाद। जो व्यक्ति ने ऊंचा स्वाद को प्राप्त किया है अपने तरुण अवस्था में, जब उसके इंद्रिय और मन सक्षम है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करता नहीं, वो क्या करता है, जिस तरह ये जो कूर्मों गानी व सर्वेश्वर भगवान बताते हैं उदाहरण, ये कूर्म जो होता है, आप कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में जाइए, उधर आप देखेंगे वो दरवाजे पर एक कूर्म है, कूर्म का एक मूर्ति है। क्यों कूर्म का रखा है, जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तभी हमारे आंखों से भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करना चाहिए, अभी हाथों को ऊपर करके नाचना चाहिए, पांव पांव से कूदना चाहिए। अगर हम पुष्कलम बोलते हैं, हमारा शरीर तंदुरुस्त है, लेकिन अगर हम नाचते नहीं तो उसको बल कपटी बोला गया है। बल कपटी का मतलब है उसके अंदर बल है लेकिन वो कपटी है। क्यों, क्योंकि वो बल को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है। अगर जिसके पास पैसा है भगवान की सेवा के लिए नहीं देता है तो वो धन कपटी है। ऐसा तो मंदिर में जाते समय हम बल कपटी धन कपटी नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमें सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए वो कूर्म जो है वो उसका सर भी बाहर है, हाथ बाहर है, पांव बाहर है, ऐसा है। लेकिन जब हम मंदिर के बाहर हम सड़क में घूम रहे हैं, जैसे अजामिल को देखने को प्राप्त हुआ, जो गंदा कुछ चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमें आंख बंद कर लेना चाहिए, तो अपने अवयवों को अंदर ले लेना चाहिए हमें, ऐसे ये उदाहरण भगवत गीता भगवान देते हैं। इस तरह ये विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने तरुण अवस्था में अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके और साथ में रहने के कारण संघ में बहुत आसान है ये करना, और उनको शांति और सुख प्राप्त होता है। क्या है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धिये यस्मात ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। उनको ब्रह्म सौख्य प्राप्त होता है, ब्रह्म आनंद प्राप्त होता है। और जब भगवान का नाम लेते हैं, जो हायर टेस्ट मिल गया, अगर हमें एक बहुत बड़ा महाप्रसाद प्लेट देते हैं जिसमें सब्जी है, पूरी है, स्वीट राइस है, तरह तरह के 12 तरह के व्यंजन है, अगर हमारे हाथ में एक सूखा रोटी है तो हम क्या करेंगे, सूखा रोटी को फेंक देंगे और इस महाप्रसाद प्लेट को खाएंगे, सूखा रोटी की ओर कोई मुड़कर भी देखेगा नहीं, है ना। इस तरह इंद्रिय तृप्ति इस दुनिया की जो है वो कुत्ते बिल्ली के लिए है, तो वो कोई फेंक सकता है उसको, फेंक कर भगवान की आशीर्वाद को भगवान की प्रसाद को प्राप्त कर सकता है ऐसे। तो ऐसे ब्रह्मचारी बाद में या तो मंदिर में ज्वाइन करते हैं, फुल टाइम ब्रह्मचारी बनते हैं, किस लिए? अपने जीवन को सार्थक करने के लिए और दुनिया के सब लोगों को जागरण करने के लिए, जागृत करने के लिए कि हे भूलो मत, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा भगवान के साथ नाता है, उसका उसको याद करो और अगले जन्म में जानवर मत बनो, अभी शुद्ध जीवन ऊंचा विचार जियो और अंत में भगवत धाम लौट चलो। इस तरह सिखाने के लिए वो ब्रह्मचारी बनते हैं। अगर उनको ब्रह्मचारी नहीं बना है तो गृहस्थ बनते हैं। गृहस्थ बनने से क्या होता है, उनको दो तीन सालों में पता चल जाता है कि ये पति पत्नी का जो आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, उनको समझ में आ जाता है। क्योंकि ये शारीरिक सुख जो है ये क्षणभंगुर है, ये सुखदायक नहीं है, ये जो भौतिक दुनिया का भौतिक सुख। इसलिए आप देखेंगे वैदिक संस्कृति में क्या करते हैं, स्त्री पुरुष को शादी करा देते हैं 12-15 उम्र के अंदर। ये कारण क्या है, ये टीनेज, ये 13-14 उम्र के बाद एक व्यक्ति का तरुण अवस्था में इंद्रिय और मन बहुत बलवान बन जाते हैं। बलवान होने के कारण क्या है, व्यक्ति गलत मार्ग में जाने की संभावना है। आजकल भारत में भी स्त्री पुरुष गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह जोड़ देते हैं, उसमें फंस जाते हैं लोग आजकल, और शादी के पहले ही सब कुछ हो जाता है और गलत कार्य में फंस जाते हैं, उसके कारण नरक में जाना पड़ता है। जो लोग आधार्मिक रूप से शादी के पहले गलत काम करते हैं उनको जानवर का शरीर प्रदान किया जाता है अगले जन्म में, उनको शास्त्र बताते हैं ऐसे है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में क्या करते थे, 15-16 साल में शादी करवा दो। अगर एक स्त्री को मालूम हो कि मेरा पति है दूसरे गांव में, अभी 16-17 उम्र में हम साथ में रह सकते हैं, तो वो किसी भी पुरुष के बारे में सोचेगी नहीं मन में। इस तरह पुरुष भी अगर शादी हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता हो, वो जिम्मेदार बन जाता है, लापरवाही नहीं बनेगा वो। और उसको भी मालूम है कि अभी मेरा स्त्री है, मैं शादी किया है, इसलिए वो गलत मार्ग में नहीं जाएगा। 17-18 उम्र में साथ में रहने के लिए देते हैं, उससे क्या होता है तो उनका बच्चा हो जाता है, 2-3-4 बच्चे हो जाते हैं 22 उम्र में, उसके बाद बस उनको पारिवारिक जीवन में रुचि बढ़ जाता है, चला जाता है। उसके बाद पति पत्नी दोनों का रुचि किसमें है, बच्चों को जिम्मेदार रूप में बड़े करने में, उनको संस्कार प्रदान करना, उनको अच्छे अच्छी चीजों को सिखाना, उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे वैदिक संस्कृत में अगर 50 उम्र की कोई स्त्री है, उसके पौत्री बोलते हैं ना, पौत्र पौत्री वगैरह है उसके, हैं आप देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने आपके दादा के पिता को देखा आपने, एनी ऑफ यू हैव सीन योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स फादर, देखिए कुछ लोगों ने देखा है। क्योंकि ये वैदिक संस्कृति में इस तरह इतनी पीढ़ियों का आप देख सकते हैं, गलत मार्ग में कोई फंसेंगे नहीं। तो अगर किसी ने ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिया है तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद उनको बहुत आसानी से ये इंद्रिय सुख को छोड़कर भगवान के ऊपर मन लग जाता है, भगवान के ऊपर लगाना और पत्नी बच्चों को गाइडेंस देना, ये बहुत आसान हो जाता है उनको। इसलिए जब 45-50 ऐसे उम्र आ जाता है, वो सोचते हैं कि अभी हमने दुनिया में जो कमाना है हमने कमा लिया है, जो अभी बच्चों को पैदा किया है, उनको बड़ा किया है, शादी करके सेटल कर दिया जीवन में, अभी क्या बचा है, अभी 50 हो गया है उम्र, चलो अभी हम भगवान की सेवा करें। लेकिन आप देखेंगे जिनको पहला ट्रेनिंग नहीं मिला है, ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग नहीं मिला है, जिस तरह ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग मिलता है इस तरह स्त्रियों को भी घर में ट्रेनिंग दिया जाता है। किसमें, आजकल स्त्रियां बोलती है हम भी कॉलेज में जाएंगे, हम भी पढ़ेंगे कॉलेज में, हम भी कंप्यूटर में काम करेंगे, हम भी फॉरेन जाएंगे, गलत नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रभुजी बोलते हैं एक 16 उम्र की स्त्री और 16 उम्र की पुरुष दोनों इस दुनिया में फ्रीली घूम नहीं सकते हैं। 16 उम्र का पुरुष कहीं भी घूम सकता है लेकिन 16 उम्र की स्त्री घूम नहीं सकती है सारे दुनिया में, उसको अनेक लोग शोषण करेंगे उसको। तो स्त्री के लिए रक्षा चाहिए शास्त्र के अनुसार, हम देख सकते हैं। लेकिन स्त्रियों का प्रशिक्षण क्या है, वो स्त्री को बोलते हैं होम मेकर, घर में कैसे सब लोगों को खुश करना, जैसे पति को, बच्चों को, पति के रिश्तेदारों को, सबको खुशी रखना ये स्त्री का कर्तव्य है। तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे अलग अलग लोगों के साथ बर्ताव करना, कैसे कुकिंग करना, कैसे रंगोली डालना, कैसे भगवान की पूजा करना, कैसे संस्कारों को करना, कैसे पति की सहायता करना भक्ति में जीवन में, ये सब सिखाया जाता है उनको। उनका भी ऐसा प्रशिक्षण है, सेपरेट प्रशिक्षण उनका भी, लेकिन प्रशिक्षण के बिना जैसे द्रौपदी सिखाती है किसको, सत्यभामा को। सत्यभामा पूछती है द्रौपदी को, हे द्रौपदी मैं एक पति को संभाल नहीं पाती, तुम्हारे पास पांच पति है, तुम कैसे संभालती हो? क्योंकि द्रौपदी के पंच पांडव पति प्राप्त हुई, क्योंकि उनके पूर्व जन्म में द्रौपदी ने शिव जी की पूजा की थी। और जब शिव जी प्रकट हुए, द्रौपदी के मन में पांच गुण थे जो ऐसे पति की इच्छा थी उनके मन में, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, ऐसे पांच बार बोला उन्होंने। तो पांच बार बोलते हुए अलग अलग गुणों का स्मरण किया उन्होंने, इसलिए अगले जन्म में उनको पंच पांडव पति के रूप में बन गए हो। तो द्रौपदी बताती है उनको कैसे पत्नी जो होती है वो पति के बाद सोती है और सुबह पति के पहले उठ जाती है, और पति के सामने खाते नहीं, पति के सामने ड्रेस करते नहीं, पति के सामने जोर से बोलते नहीं। जब पति की अनुपस्थिति में वो तपस्या करती है, और पति के उपस्थिति में अच्छी तरह अपने को सजाती है, और हमेशा वो आनंद का वर्धन करती है घर में, और हमेशा सौम्यता के साथ सबसे बर्ताव करती है, और अपने प्रेम के द्वारा बच्चों को और घर के दूसरे सदस्यों को बहुत आनंद में डुबाती है ऐसे, और वो धार्मिक होती है, वो पतिव्रता होती है, उसका शुद्ध चित्त होता है, ये सब बताते हैं वो है? महाभारत में हम पढ़ते हैं, तो उनका भी ट्रेनिंग है, स्त्रियों का भी ऐसे। अगर किसी को ट्रेनिंग नहीं मिला है पहले उनके जीवन में, आजकल माताएं है बोलती हैं अपने बेटियों को, ए कॉलेज में जाओ, पढ़ो, अमेरिका जाओ, बहुत पैसे कमा कर लेके आओ, ऐसे अनेक माताएं वो प्रोत्साहन देते हैं ऐसे, और इसलिए शादी के बाद उनको मालूम नहीं होता कि कैसे कुकिंग करना, वो पति को बोलती है क्या तुमको कुछ ट्रेनिंग मिला है कुकिंग में, तुम ही कर दो ऐसे बोलते है, मैं भी कंपनी जाती हूँ इसलिए मेरे कपड़े तुम दो, तुम्हारे कपड़े मैं दूंगी है? तो इसलिए प्रशिक्षण जिनको मिला है पहले वो लोगों को भौतिक रुचि चला जाएगा उनको, शादी के बाद तीन चार पांच साल गया भी वो समझ जाएंगे साफ साफ ये भौतिक दुनिया में भौतिक शरीर में कुछ नहीं है। मेरे गुरु महाराज रामनाथ स्वामी महाराज एक बार बोला उन्होंने प्रवचन में, शादी के पहले स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखते हैं उनको लगता है कि गुलाब जामुन जैसे, और शादी के बाद एक दूसरे को देखते हैं वो करेला जूस जैसे, बोला ऐसे बताया उन्होंने। ये क्यों है? क्योंकि भौतिक जीवन ऐसा है, क्योंकि हम दूर से देखने में अच्छा दिखता है और निकट आने के बाद समझ जाते हैं कि कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है इधर। ये इसको क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं इसको, है जैसे दूर में पानी दिखता है पास में आने के बाद कुछ नहीं है उसमें। तो ये साक्षात्कार भी अच्छा ही है आध्यात्मिकतावादी के लिए, ये साक्षात्कार बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएंगे ठीक है अभी इसमें स्वाद नहीं मिल रहा है, हम ऊंचा स्वाद हमें प्राप्त करेंगे अभी है? इस तरह सोचकर वो क्या करते हैं, वो आध्यात्म जीवन में लग जाएंगे अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। और इधर बताते हैं प्रभा जी बताते हैं इधर, ये गृहस्थ का कर्तव्य है कि धीरे धीरे भौतिक जीवन को वाइंड अप करना चाहिए। वाइंड अप का मतलब क्या है, जैसे 30, 40, 50, 60 का मतलब है धीरे धीरे भौतिक जीवन को कम से करना और आध्यात्मिक जीवन को विकास करना, यह कर्तव्य है। एक भक्त थे, मुझे उन्होंने एक लेटर भेजा था, मुझे बोला कि प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ कि 45-50 में थोड़ा वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर हम मंदिर में पूरा आकर सेवा करने के लिए प्रयत्न करूं, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, सिर मुझे डर हो रहा है कि अगर मैं भौतिक काम को छोड़ दूंगा तो इधर भी काम नहीं, वो काम को भी छोड़ दिया तो जीवन में करने के लिए कुछ नहीं होगा मेरे पास, ये मुझे डर है, ऐसे बोला उन्होंने। मैं तुरंत उनको मेल भेज दिया, बोला कि प्रभु जी आपके लिए सैकड़ों सेवाएं हैं मंदिर में, अभी तुरंत आ जाए, जब आना तुरंत आ जाइए आप, हम सेवा दे देंगे। तो अगले संडे आए थे वो, अगर मेरे बोले मुझे प्रभु जी मैं ऐसे ही बोला आपको लेकिन आपने इतना सीरियसली ले लिया आपने, ऐसे बोले वो। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी हमें डर होता है, इसके बारे में सोचना ही डर होता है हमें, सोचने से कैसे हम पत्नी को बच्चों को छोड़कर हम मंदिर में आए और भगवान की सेवा करें। तो मैं उनको बताया, प्रभुपाद जी ने एक कत लिखा एक परिवार को, एक पति पत्नी ने प्रभुपाद जी को कत लिखा पति ने प्रभुपाद को लेकर, प्रभुपाद जी मेरे पत्नी से मुझे परमिशन मिल गया है संन्यास लेने के लिए, तो मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने वापस लेटर लिखा उनको, तुमको संन्यास लेने की क्या जरूरत है, तुम और तुम्हारे पत्नी ऑलरेडी सन्यासी है। ऐसे प्रभुपाद ने लिखा उनको, सन्यासी का काम जो है आप दोनों ऑलरेडी कर रहे हो, तो आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, आप आजीवन आप दोनों साथ में रहो और इस तरह से सेवा करते रहो। ऐसे प्रभुपाद ने एक परिवार को लिखा, तो मैं वो लेटर दिखाया मैंने उनको और बोला कि ये छठे अध्याय के पहला श्लोक में भगवान बताते हैं कि हमें क्या कैसे जीवन जीना चाहिए वो मालूम होना चाहिए है? तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि पृथु महाराज के समय, अम्बरीश महाराज के समय, युधिष्ठिर महाराज के समय लोग वानप्रस्थ लेते थे, जैसे पृथु महाराज वानप्रस्थ लेकर गए जंगल में, युधिष्ठिर महाराज गए, अम्बरीश महाराज गए, ऐसे हम आधुनिक दुनिया में भी हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हमारे कांग्रीगेशन के अनेक भक्त हैं, जैसे हमारे जयदेव प्रभु नए मंदिर के कंस्ट्रक्शन में पूरे डुबा कर सेवा कर रहे हैं, जैसे हमारे वंशी गोपाल प्रभु और राधिका माता जी, ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह भक्ति करके अनेक लोगों को भक्ति मार्ग में लाया है। और जैसे प्रभु जी बताते हैं, उन्होंने ऐसे दो बच्चे पैदा किए हैं जो भक्ति में स्थित हैं बहुत अच्छी तरह, उनके बेटे और उनकी बेटी, तो उन्हें इतने तरह तरह के सेवाएं करते हैं, मंदिर में जुड़े हैं, भक्ति में रुचि लेते हैं। और उसके बाद जब वो 50 से उम्र ज्यादा हो गया, वंशी गोपाल प्रभु आजकल मंदिर में आकर पूरा समय बिताते हैं, हमारे ब्रह्मचार्य क्लास अटेंड करते हैं, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ले लिया उन्होंने, और इतना सेमिनार देने के लिए जाते हैं, प्रचार काम के लिए जाते हैं, ऐसे पूरा समय आकर इधर बिता रहे हैं। अभी उनकी वाइफ भी, माता जी भी वो प्रचार करती है, इतने घरों में जाकर माताओं को प्रचार करते हो, उनके उनके बेटी बीएड पूरा करके अभी तैयार है, जब इधर पुणे में स्कूल शुरू होगा तब मैं टीचर बन जाऊंगी, वो तैयार है। तो हम ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, प्रैक्टिकल उदाहरण, प्रायोगिक उदाहरण क्यों दिया मैंने, अगर हम इस बातों की इसके बारे में बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, पुराने जमाने के लोगों के बारे में लोग सोचते हैं, हम आधुनिक दुनिया में भी हम देख सकते हैं ये संभव है। कोई गृहस्थ इस तरह अपने जीवन को भगवान की ओर ये धीरे धीरे वाइंड अप करके अपने 50-60 के बाद क्या करना चाहिए, पूर्ण तरीके से मंदिर में आकर, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे शादी होकर सेटल हो गए, आप जितना भक्ति में तीव्र बनेंगे उतना आप जैसे आम जो होता है वो जब और इसे राइप पक पक जाता है ना, तभी बहुत उसका रुचि भी बढ़ जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, अगर आप भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, जितना आपका उम्र बढ़ता है उतना लोग आपको प्रेम करते हैं, आपको आदर देते हैं, प्रेम करते हैं, और आपके संग में वो आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति जितना हमारा उम्र बढ़, कभी कभी माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं देते। जैसे मैं दक्षिण भारत में गया था, एक माँ बाप ने बोला, प्रभु जी बच्चों को सिखाओ माँ बाप को कैसे आदर देना चाहिए, या आप उनको वैल्यू एजुकेशन सिखाओ। तो मैं बच्चे जाने के बाद वो माँ बाप को बोला, मैंने वो उनको आदर देने के लिए मैं सिखाऊंगा, लेकिन आदर स्वीकारने के लिए आप लोग योग्य बनना चाहिए, तभी तो आदर देंगे बच्चे। तो मैंने बोला हो सकता है कि आपके अंदर कुछ आदत है जिसके कारण बच्चे आपको आदर नहीं देते हैं, आप जरा सोचो क्या प्रॉब्लम है। तो इधर उधर मुड़कर देखा उन्होंने, बाद में बोला प्रभु जी हम दोनों आपस में इतना झगड़ा करते हैं और बच्चे देखते हैं, और हमसे ही हमारे बच्चों ने सीखा कैसे झगड़ा करने का, और हम लोग दिन में हम 6 घंटा टेलीविजन देखते हैं, लेकिन हमें इच्छा है कि बच्चे टेलीविजन ना देखे, हम देखेंगे लेकिन उनको नहीं देखना चाहिए ऐसे। तो मैंने बोला पहले आपको सुधारना पड़ेगा, बाद में वो सुधारेंगे। इस तरह परिवार में बच्चे लोग क्यों आदर नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल 80 उम्र के आदमी भी बैठकर क्रिकेट देखता है टेलीविजन में, उम्र हो गया 80, दांत गिर गया, सफेद बाल हो गया, आंख भी पूरा दिखता नहीं, वो चल नहीं सकता है, एक लाठी लेकर चलता है हाथ में, लेकिन वो क्रिकेट देखता है सुबह से शाम तक। इसका मतलब है उसके अंदर जो भौतिक इच्छा है वो खत्म नहीं हुआ है। तो वो भौतिक इच्छाओं को खत्म करके आध्यात्मिक दिव्य इच्छाओं को हृदय में स्थापित करना ही आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है, भगवान से आकर्षित होना ही। तो प्रभा जी बोलते हैं ऑर्डिनरी गृहस्थ ट्रेंड गृहस्थ, मतलब क्या है, कभी कभी गृहस्थ लोग बोलते हैं प्रभु जी हमें ऐसे ट्रेनिंग नहीं मिला हमारे बचपन में, अगर हमें मिलता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें जिस अवस्था में हम आते हैं उस अवस्था में से हमें आध्यात्म जीवन को अपना कर आगे चलना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में मैंने आपको क्यों बोला आज, आप देखेंगे अभी कुछ ही दिनों के पहले हमारे मंदिर में 24 भक्त लोग ज्वाइन किया है जो पीले कपड़े पहनते हैं नए ट्रेनिंग के लिए, नया प्रशिक्षण ब्रह्मचारी प्रशिक्षण के लिए। तो हर साल हम लगभग 20-25 युवकों को ब्रह्मचारी आश्रम में एडमिट करते हैं ट्रेनिंग के लिए, एक साल के ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद एक साल दो साल के बाद वो लोग सफेद कपड़े लेते हैं, शेव करते हैं, और उसके बाद 4-5 साल के बाद अगर वो पक्के हो गए तो सैफ्रन कपड़े लेते हैं। तो जो सैफ्रन कपड़े लेते हैं वो लोग शादी नहीं करते हैं, वो आजीवन वो ब्रह्मचारी रहेंगे और संन्यास लेंगे बाद में। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि सैफ्रन लेने के बाद भी ऐसे कभी कभी हो सकता है कि किसी के मन में इच्छा हो शादी वादी करने के लिए 7-8 साल के बाद भी, उनका मना नहीं है, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो लोग कभी शादी नहीं करते, वो भगवान के विग्रह के सामने वो वचन लेते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग सैफ्रन कपड़े लेते हैं वो गुरु को वचन देते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। कभी कभी ऐसे सैकड़ों लोगों में एक दो लोग ऐसे बदलने की संभावना है, इसलिए हम किसी को सैफ्रन हम आसानी से नहीं देते हैं, बहुत सालों के बाद ही दिया जाता है। तो जब ये बच्चे विद्यार्थी ज्वाइन करते हैं मंदिर में, कुछ लोग हैं इनके माता पिता आएंगे पुणे में, पुणे में आते हैं उनको मिलने के लिए, कभी कभी कांग्रेशन को मिलते हैं, तो हमारे कांग्रेशन लोग बोलते हैं क्या करे राधेश्याम जी ऐसे बच्चों को लेके आकर एडमिट करता है आश्रम में, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इससे उनके माँ बाप जो है और भी वो क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये बच्चे जो है जो ज्वाइन करते हैं इनकी भक्ति भावना जो है इनके हृदय से स्वाभाविक रूप से इनको अपने जीवन को भगवान की सेवा के लिए देने की इच्छा पैदा हुआ है इनके इनके हृदय में। जैसे किसी माता ने अपने बच्चे को लाया था मेरे पास नमस्कार करने, छोटा बच्चा है उसका 3-4 महीना है, आंख भी थोड़ा ही खुला है उसका, तो जब मेरे पास लेके आया तुरंत उसने ऐसा किया, ऐसा किया उसने। तो इतना छोटा बच्चा को किसने सिखाया है? कुछ बच्चों का ऐसे संस्कार होता है वो बचपन से ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे हम प्रचार करते हैं हजारों विद्यार्थियों में, कुछ विद्यार्थी डिसीजन लेते हैं कि हम इस तरह जुड़े, हम ब्रह्मचारी बने अपने जीवन में। जैसे भगवान बताते हैं पूर्व अभ्यास ये ना तेने वक्रियते ही अवश्योपि, भगवान बताते हैं ये लोगों ने पूर्व अभ्यास किया है पूर्व जन्म में, जिसके कारण इस जन्म में इनको आकर्षण है भगवान में, भगवान के भक्तिमय सेवा में, इनको शादी वादी करने की इच्छा नहीं है, स्वेच्छा से ये लोग आए हैं इधर। हम उनके माँ बाप आएंगे इधर, कभी कभी माँ बाप आते हैं इधर, हम उनको समझाते हैं कि एक साल का ट्रेनिंग है, बीच में भी कुछ लोग भाग जाते हैं टाइम नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपके बेटे को शादी करना है तो आप कर सकते हैं, हमारे पास मैरिज ब्यूरो भी है, उनको समझाते हैं। हमने इनको कुछ बलात्कार तरीके से बनाया नहीं है, सब वॉलंटरी है, और अनेक बच्चे बड़े बड़े परिवार से आते हैं, अनेक बच्चे करोड़पति उनके परिवार से आते हैं, लेकिन ये इच्छा जो है जैसे आपको मालूम है सिद्धार्थ गौतम है, गौतम बुद्ध है, वो बहुत बड़े परिवार में जन्मे थे हैं, लेकिन सबको चाहकर उन्होंने संन्यास लिया ऐसे ऐसा आप देखते हैं अनेक लोग ऐसे। तो हम उनको समझाते हैं कि ये पूर्व जन्म से आता है, आप इनको फोर्स करके शादी मत कराइए, जिस तरह हमें इनको फोर्स करके ब्रह्मचारी नहीं बनाना चाहिए इस तरह उनको फोर्स करके शादी भी नहीं कराना चाहिए, इनको स्वतंत्रता दीजिए और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। हम समझाते हैं उनको और हम बोलते हैं कि आप ही आते रहो मंदिर में, और वो भी माला लेते हैं। ऐसे स्कान में मना नहीं है कि ब्रह्मचारियों को अपने माँ बाप से मिलने में कुछ मना नहीं है, मिल सकते हैं। और कभी कभी 1-2 साल के बाद कुछ लोग चले जाते हैं, शादी करके सेटल होते हैं, लेकिन उनको जो प्रशिक्षण मिला आश्रम में उससे वो लोग बहुत गंभीर बनते हैं भक्ति में, उससे कुछ नुकसान नहीं है उनको, बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। आप देखेंगे मुझे भी अवसर होता है, ये ब्रह्मचारी जैन कहता हमारे आश्रम में वो इतने आलसी था शुरुआत में, हमने सोचा भी इसको क्या हम अंदर एडमिट करें या ना करें। अभी मैं 3 साल के बाद उसको देखता हूँ, इतना तेजी से भागता है दौड़ता है, इतना सेवा करता हो, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसा है कि सब तरह के अच्छे गुण आ जाते हैं इनके अंदर ऐसे। तो कांग्रीगेशन का क्या कर्तव्य है, जब ऐसे माँ बाप आते हैं तो उनको प्रेम देना, उनको सपोर्ट करना, उनका बोल सकते हैं पुणे में सेटल हो जाओ, आपके बच्चे को रोज देख सकते हो, आप बोल सकते नया मंदिर आने वाला है, उनको भी पुणे में लाएंगे, वो भी भक्ति में जुड़ जाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे क्रिस्त लोग जो हैं, क्रिस्त लोग वो लोग पिंपरी में ऐसा एक चर्च है, उनके पास 100 गृहस्थ हैं, पति पत्नी, उनको महीने में वो लोग सिर्फ 2,500-3,000 रुपया हाथ में देते हैं उनको, बस उनको खाने के लिए व्यवस्था करते हैं, टहने के लिए व्यवस्था करते हैं। 100 पति पत्नी तरुण लोग हैं, मैं जाकर मिला था एक परिवार से, तो वो उन्होंने बोला कि हम लोग मिशनरी लोग हैं। मिशनरी का मतलब क्या है, हम लोग ये चर्च का काम करते हैं, वो दिन भर भागते हैं, दौड़ते हैं, पैम्पलेट छापते हैं, वितरण करते हैं, लोगों को लाते हैं, और शनिवार रविवार को 10,000-15,000 लोग आकर उनका प्रवचन सुनते हैं उधर ऐसे। तो क्रिस्त लोग ऐसे प्रचार करते हैं, बाइबल को फ्री में बांटते हैं, ऐसे करते हैं। तो शादी हुए लोग भी, तो मैंने उनको पूछा आपको डर नहीं है भविष्य में ये 3,000 को लेकर आप क्या करने वाले हो, आपको क्या सिक्योरिटी है भविष्य में, आपका बीवी भी है बच्चे भी है, वो बोल रहे हैं सब भगवान देखेंगे। तो और भी उनके पास ब्रह्मचारी लोग हैं, ब्रदरन बोलते हैं जो लोग शादी नहीं किया है, वो लोग भी ऐसे सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं उसमें। तो आप देखेंगे ऐसे संस्थाओं में, क्रिस्त संस्थाओं में, जैन संस्थाओं में लोग जुड़कर करते हैं। लेकिन हिंदुओं में आप देखिए, हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं पैसा कमा कर लाने के लिए। दक्षिण भारत में मैं जब गया था, एक श्री वैष्णव है, उनके 2 पुत्र थे, उन्होंने बोला कि मेरा बड़ा बेटा जो है थोड़ा वो लल्लू पंचु है, उसका ये नहीं है, बुद्धि ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने उसको पूजा पाठ के लिए वेद पाठशाला में भेज दिया मैंने उसको, ऐसे बोला। और छोटा लड़का है ना, वो एकदम बुद्धिमान है, उसको अमेरिका भेज दिया मैंने। तो बुद्धिमान बेटा अमेरिका के लिए, जो अमेरिका में क्या काम करेगा, गधे जैसे काम करेगा वो, पैसा कमाएगा, पैसा भेजेगा, डॉलर में भेजेगा बस, और अमेरिका भेजता है। और जो जिसको बुद्धि नहीं है उसको लल्लू पंच को उसको वैदिक पाठशाला में भेजता है। तो लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी बनना नहीं तो साधु बनना, लल्लू पंचों के लिए सोच रहे हैं लोग। इसलिए हमने बोला कि हमारे आश्रम में जो भी ज्वाइन करते हैं ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े नौकरी को छोड़कर इधर आए हैं। किस लिए हम लोगों ने क्यों नौकरी छोड़ा है, क्योंकि ये धर्म का प्रचार करने के लिए। अगर हम ये नौकरी नहीं छोड़ा है, अगर ये एक बीबी है, 2 बच्चे हैं, हमारा छोटा घर है, सिर्फ वो छोटे घर में हम फंस जाएंगे, हम दूसरा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। बीबी को देखो, बच्चों को देखो, मार्केट में जाओ, बैंक में जाओ, ये करो वो करो, उसमें पूरा समय चला जाएगा दिन भर। लेकिन अगर हम आश्रम में रह सकते हैं तो शास्त्रों को पढ़ना और इधर उधर घूम कर हम प्रचार कर सकते हैं, 24 घंटा यही काम हमारा, अनेक लोगों को हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं, डिस्करेज, हताश नहीं, निरुत्साह नहीं करना चाहिए, ठीक है, निरुत्साह नहीं करना चाहिए। और जो इस तरह ज्वाइन होते हैं आश्रम में, धीरे 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 स्ट्रांग बनते जाएंगे। आप देखेंगे आपके आंखों के सामने कितने लोग आए हैं, बहुत सारा के पहले कैसे धीरे धीरे ये लोग पक्के हो गए हैं भक्ति में, इनको आनंद मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा तो कैसे तैरेंगे। इनको एक भी पैसा वेतन नहीं दिया जाता है, इनके लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है, ये लोग कैसे तैरते हैं, क्योंकि भगवान इनको प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज आगे के श्लोक में बताते हैं कि अपने मित्रों को बोलते हैं कि ये भगवान जो है प्रीणनाय मुकुंदस्य, बताते हैं कि ये भगवान तुम्हारे हृदय में बसे हुए हैं और वो प्रेरणा देने वाले हैं हम सबको, वो ही प्रेरणा देते हैं, जिसके कारण एक जीव जो है भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। उस समय प्रहलाद बताते हैं, हे मित्रों, इस दुनिया के लोगों को तुम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन भगवान हरि को तुम आसानी से संतुष्ट कर सकते हो, ऐसे वो बताया उन्होंने। जैसे मैं जब गया था उधर पंढरपुर में, उधर एक बहुत दिव्य कथा सुनी हमने। तो पंढरपुर बड़े मंदिर के पास में और एक विठल का मंदिर है, छोटा मंदिर है, तो उधर हम गए थे। तो मैंने पुजारी को पूछा कि ऑलरेडी एक विठल का मंदिर है और एक मंदिर क्यों है इधर, तो उन्होंने बोला कि इसी स्थान में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी वो रोज भगवान विठल को एक थाक बनाती थी, बनाकर भगवान को अर्पण करती थी, लेकिन वो बहुत बूढ़ी हो गई और एक दिन उन्होंने थाक बनाया लेकिन उठ नहीं पाई, वो रोने लगी जोर से, हे विठल मैं तुम्हारे मंदिर में आकर मैं दे नहीं पा रही हूँ, इतना बूढ़ी हो चुकी हूँ कि कितना बड़ा मेरा अभाग्य है, ऐसे वो रो रही थी। तुरंत विठल उधर प्रकट हो गए, प्रकट होकर वो बूढ़ी स्त्री को बोला उन्होंने, तुम चिंता मत करो मैं इधर ही आकर मैं रोज थाक स्वीकारूंगा, तुम इधर ही दो मुझे, ऐसे वो स्वीकारने लगे। तो उसी स्थान में एक विठल का शिव विग्रह है उधर। तो इस तरह हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों का कितना प्रेम करते हैं और आसानी से भगवान की सेवा किया जा सकता है, एक बूढ़ी स्त्री भी कर सकती है इसे। तो प्रहलाद ने बोला कि ये भगवान हरि को संतुष्ट करना आसान है लेकिन रिश्तेदारों को संतुष्ट करना बहुत कठिन है, बोला उन्होंने बहुत कठिन है इस दुनिया में। वो बोलते रहेंगे नहीं और भी चाहिए और भी चाहिए। जैसे एक हमारे आश्रम में था एक ब्रह्मचारी, कुछ समय के लिए टारा, कुछ महीनों के लिए टारा, तो उसकी माँ बोली कि बहुत मैं मेरा बुखार है, मैं मेरा तबीयत बिगड़ गया है, घर में आ जाओ एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ता गया तो माता ने बोला एक महीना टहरो, बाद में ठीक होने के बाद तुम वापस लौटो। तो एक महीना टहरा, वो बोला तीन महीने के लिए टहरो बेटा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तीन महीने टहरा वो घर में, बाद में फोन आ गया बोला कि अभी माता का तबीयत मैं देख रहा हूँ, अस्पताल में लेके जा रहा हूँ, तो प्रभु जी मैंने निर्णय ले लिया कि मैं शादी करूँ। हमने बोला ठीक है, माता बोल रही शादी करो शादी करो, बहुत सताती है, सिर्फ ये एकमात्र उनकी इच्छा को मैं पूर्ति कर देता हूँ। तो ठीक है शादी कर लिया उन्होंने। उसके बाद माता ने बोला कि तुम क्या धंधा करते हो, ये कॉलेज में टीचर का काम करते हो, ये तो समाज के लोग इसको ज्यादा महत्व देते नहीं, आदर देते नहीं, प्रेस्टीज नहीं है, तुमको अब पैसा भी ज्यादा नहीं मिलता, तुमको 15,000 मिलता है, तुम और भी कुछ बड़ा एमटेक पीएचडी करके आओ। तो गए एमटेक पीएचडी करके वापस लौटे और टीचिंग किया, जॉब किया। माता ने बोला ये बस मेरे माता के मित्रों ने सखियों ने बोला कि ये तुम्हारा बेटा देखो ये टीचिंग काम करता है, कोई आदर नहीं देंगे इस नौकरी को, इसको सॉफ्टवेयर जॉब में लगा दो। वो बोला कि सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओ, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में गए। तभी माता ने बोला कि देखो तुम्हारा खुद का घर होना चाहिए। तो बेटे ने बोला कि मैं तो आपके घर में रहता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं तुमको खुद का घर होना चाहिए। उन्होंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो माता ने बोला नहीं नहीं तुम पैसा लोन में ले लो। तो बड़ा लोन ले लिया उन्होंने माता की संतुष्टि के लिए। तो लोन लेकर उन्होंने बोला कि मैं पुणे में जाकर ये घर ले लेता हूँ क्योंकि भक्तों का संग मिलेगा। उन्होंने बोला नहीं 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 इधर ही हमारे शहर में ही तुमको घर लेना पड़ेगा और हमारे घर के बाजू में ही लेना पड़ेगा तुमको, ताकि मैं बार बार तुमको देख सकती हूँ क्या तुम आर्थिक विकास के लिए ठीक तरह से काम करते हो कि नहीं। ऐसे तो पड़ोस में ही ले लिया उन्होंने घर। उसके बाद भी माँ जैसे बिच्छू क्या करता है, क्या बोलते हैं इसको, डकार धान है, सब समझ गए ना, ऐसे करती रही वो बार बार बार। जो वो बेचारा आया था तो 6-7 साल के बाद इधर आया था पुणे में एक बार, तो मंगलारती में था वो, मैं उसको नचाया, वो नाच नहीं पाई ठीक तरह से, वो बहुत थका था इसे। तो मैंने बोला क्यों इतना थक गए, तुम बूढ़े नहीं हो गए अभी, तो तुम्हारा उम्र 25-30 भी नहीं हुआ। तो बोला कि प्रभु जी मेरा शरीर थका नहीं है, मन थक गया। बोले उसने क्या समस्या है, बोला कि प्रभु जी दुनिया के लोगों को हम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो मैं तुरंत उनको निकाल कर दिखाया प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोलते हैं कि दुनिया के लोगों को हम संतुष्ट नहीं करते, जितना भी करो वो डिमांड करते जाएंगे करते जाएंगे, लेकिन भगवान हरि इतने महान है, उनको एक तुलसी का पत्ता अर्पण करो, भगवान हरि के मुख में मुस्कान है, भगवान हरि बोलते हैं मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस तरह हम देख सकते हैं। तो मित्र लोग बहुत खुश हो गए इसको सुनकर, बोला कि प्रहलाद को, प्रहलाद वाह क्या बात बताया तुमने, हम भी तुम जैसे हम भक्त बन जाएंगे हम भी। तो सब भक्त वो सब नाचने लगे कीर्तन करने लगे उधर असुरों के आश्रम में। आप देख सकते हैं वो दोनों टीचर आए शंडा अमर गए, देखकर दोनों टीचर इतने डर गए, हम प्रहलाद को आर्थिक और इसे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स राजनीति कूटनीति और इसे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र ये सब सिखाने के लिए हम सोच रहे थे, इसको सुधारने के लिए ये लग रहा है कि हमको सुधार देगा, हमारे बच्चों को सब भक्त बना दिया इसने, ऐसे वो लोग डर गए। तो प्रभु जी बताते हैं कि जीवन की परम लक्ष्य जो है उसको हमें आगे हमें आंखों के सामने रखते हुए हमें आगे चलना चाहिए। और इसके लिए हमें भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं वो समझना बहुत आवश्यक है। जैसे प्रभु ने समझाया उनको, भगवान विष्णु जो है हर एक के हृदय में बैठे हैं और हमको देख रहे हैं और हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं और हमारे लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, परिस्थितियां प्रदान करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हर एक भक्त के कर्तव्य है प्रभा जी की किताबों को पढ़कर भगवान की ओर जो हमारा आकर्षण है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि माया भी आकर्षित करते हैं भगवान भी आकर्षित करते हैं, दोनों आकर्षित करते हैं। लेकिन माया क्या करते हैं, हमें आकर्षित करके रुलाती है, ये माया है। भगवान आकर्षित करके हमें आनंद में डुबा देते हैं भगवान, ऐसे परम आनंद में। इसलिए प्रेम आनंद, अगर किसी को प्रेम आनंद प्राप्त करना है तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इस तरह प्रहलाद महाराज उनको अच्छी तरह सिखाया, उन्होंने बताया उनके मित्रों को, देखो अगर तुम पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्रधानता देते हो और भक्ति को भूल जाते हो इससे क्या होगा, तुम परिवार वो बताते हैं ये पत्नी जो बहुत आदर देती है पति को, प्रेम करती है, तो बच्चे जो हैं जब नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं बहुत मीठे मीठे आवाज में बोलते हैं पापा पापा, जो बहुत मीठे मीठे आवाज में, तो मीठे मीठे आवाज को सुनकर और घर के जो नौकर चाकर जो काम करते हैं उनमें उनको भी हम प्रेम करते हैं, घर के जो फर्नीचर वगैरह है, कार है, बंगलो है, गाड़ी है, टेबल है, कुर्सी है, और मेरा घर है जो मेरे नाम में है, पेपर में लिखा है, इस तरह हम इन चीजों से हम इतने आसक्त हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये भौतिक चीज जो होते हैं ना उनका गुण क्या है, वो हमारे मन के अंदर बस जाते हैं, घुस जाते हैं और बस जाते हैं, जिसके कारण जैसे कभी कभी लोग आप देखेंगे एक पर्स के अंदर एक फोटो रखे हैं, दादाजी दादी जी नाने जी नाना जी सबके परिवार के फोटो, ये पर्स के अंदर भी है हृदय के अंदर भी है दोनों। और उनके बारे में हम इतना स्मरण करते हैं और हम घर की चिंताओं को अपने मन में लेकर हम उनको सुलझाने में ठीक करने में हम पूरे समय बिताते हैं, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे प्रहलाद ने बताया कि जो सिल्क वॉर्म बोलते हैं उसको, क्या है सिल्क वॉर्म, रेशम की कीड़ा जो होता है ना वो मुख से इसको निकलता है, क्या है एक तरह का तंतु को निकालता है जिसमें वो खुद अंत में वो खुद उसमें फंस जाता है उसमें। इस तरह एक व्यक्ति ही अपने भौतिक जीवन को विस्तार करता है। जैसे अगर मुझे बड़ा घर बांधना है तो सारा जीवन चला जाता है पैसे इकट्ठा करने में, लोन भरने में, है ना। इस तरह अगर कभी कभी झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, बच्चे को किस स्कूल में भेजना है, पति बोलता है वो स्कूल में भेजेंगे उधर फीस थोड़ा कम है, पत्नी बोलते है इस स्कूल में भेजेंगे फीस तो ज्यादा है लेकिन अच्छा स्कूल है, कभी कभी झगड़ा होता है इसे बीच में, है ना। इस तरह नए घर लेने में पत्नी पति के बीच में झगड़ा होता है, पत्नी बोलते है ऐसे घर लेंगे, पति बोलता है ऐसा घर लेंगे। तो इस तरह के निर्णय जब आते हैं हमारे पारिवारिक जीवन में, लोगों को क्या करना चाहिए, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान को रखना चाहिए, भगवान की भक्ति में बाधा नहीं आना चाहिए। देखिए ये पारिवारिक जीवन को खंडन जो करते हैं प्रहलाद महाराज जी, उन्होंने खुद शादी किया, वो ब्रह्मचारी नहीं बने, इसका मतलब क्या है, क्या इतना खंडन करने के बाद क्यों शादी किया उन्होंने, उन्होंने शादी किया भगवान के आदेश के अनुसार। भगवान ने बोला प्रहलाद को, अभी हिरण्यकशिपु मर गया, ये दुनिया को संभालने के लिए कोई नहीं है, तुम राजा बनो। तो आप देखेंगे एक तस्वीर में ब्रह्मा जी उनको मुकुट पहना रहे हैं प्रहलाद महाराज को, तुम इस सारे दुनिया का राजा बनो तुम शादी करो, उन्हें शादी किया और जिम्मेदारी उनको निभाया भगवान के लिए। कृष्ण रसंसार करो चाडुया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, बताते हैं कृष्ण रसंसार करो चाडुया नाचार। अगर एक पति पत्नी भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जीते हैं, घर में सदा भगवान के कार्य भगवान के संबंधित कार्यकलाप चलते हैं, प्रभुपाद जी उनको सन्यासी बुलाते हैं, प्रभुपाद जी हैं उनको सन्यासी के बराबर हम मान सकते हैं ऐसे पति पत्नी को, इतना प्रभुपाद जी उनको। एक बार प्रभुपाद ने बोला, एक व्यक्ति को लेटर लिखा उन्होंने, एक लड़का था हमारे ग्रुप में, उसको मालूम नहीं था कि शादी करना है ब्रह्मचारी बनना है, बहुत कंफ्यूज था वो, 3-4 साल कंफ्यूज था वो। अंत में उसने बोला कि प्रभु जी अभी मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे शादी करना है। आपको मालूम क्यों? कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो शादी किया है वो सन्यासी है, ऐसे बोला उसने। तो मैंने उसको बोला आपको ठीक तरह से पूरा पढ़ना चाहिए लेटर प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, To become a brahmachari is really wonderful, but if a man has a wife who is very beautiful and very submissive, but still he is dedicated to Krishna service without compromise, such a man can be considered better than a sannyasi. Prabhupada ji likhte hain. Iska matlab kya hai? Brahmachari bana bahut acha hai, lekin agar koi vyakti hai jiska patni khoobsurat hai और बहुत नम्र है पति की ओर, सब सेवा करती है, ऐसे बीबी के होने के बावजूद भी अगर किसी पुरुष के मन चित्त भगवान कृष्ण में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी से भी बढ़कर ऊंचा हम मान सकते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। इसको सुनकर गृहस्थों को प्रेरणा मिलना चाहिए इससे। हमें गृहस्थ आश्रम में भक्तों को लगना नहीं चाहिए कि गृहस्थ आश्रम को कंडम किया गया है, खंडन किया गया है शास्त्र में, ऐसा नहीं है। किसका खंडन किया गया है? जो घर में लोग भगवान को भूल जाते हैं और भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, जो अनासक्ति को नहीं बढ़ाते हैं लेकिन वो भौतिक जीवन को एक्सपैंड करते हैं, विस्तारित करते जाते हैं और ज्यादा, कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, हर एक इंसान समझता है। हम देख सकते हैं कि हम भगवान के लिए कितना समय देते हैं, भगवान के लिए कितना शक्ति देते हैं, भगवान के लिए कितना पैसा देते हैं, भगवान के संबंध में कितना बोलते हैं दूसरों को, किस चीजों के बारे में हम स्मरण करते हैं मन में, इन चीजों के द्वारा हम समझ सकते हैं ना? हम क्या भगवान की ओर मुड़े हैं, नहीं तो हम भौतिक जीवन की ओर मुड़े हैं, हम समझ सकते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब था आज ये सब चीज मैंने जो बोला कि आप समझिए, ये जो ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं, एक सौ ब्रह्मचारी हमारे आश्रम में, ये 2000 विद्यार्थियों में सिर्फ 100 ब्रह्मचारी बने हैं, 2000 विद्यार्थियों में लगभग सारे भारत के। तो कुछ ही लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, और अगर उनके माँ बाप आते हैं तो आप उनको बताइए कि आपका बेटा जो है बहुत बड़ा भाग्यशाली है, उसने बहुत लाखों जन्मों में भक्ति किया होगा जिसके कारण अभी इनको मौका मिला है भगवान को फुल टाइम सेवा करने के लिए, ऐसा आप बता सकते हो। और ये भी बता सकते हैं आप उनको कि ये आश्रम में इनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि शादी करना तो शादी कर सकते हो, ये सबको मालूम है कि मैरिज ब्यूरो है, मैरिज ब्यूरो शादी करवाता है लोगों को, इधर स्त्रियां भी आते हैं, गर्ल्स बॉयस होता है, उनका भी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण होता है, कुछ पाबंदी नहीं है, वॉलंटरी क्या बोलते हैं, स्वेच्छा से ये लोग ज्वाइन किया है। और आप बोल सकते हैं हम सालों साल देखते हैं इधर 10-15 साल जो ब्रह्मचारी बने हैं ये लोग आए हैं इधर रहते हैं ऐसे, ये अपनी इच्छा से ही रहते हैं, इनको कुछ वेतन नहीं दिया जाता है, कुछ पाबंदी नहीं है, कुछ किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ भगवान और गुरु का प्रेम का कंट्रोल इनके ऊपर बस, सिर्फ वही उस प्रेरणा से ही ये लोग चला रहे हैं। ऐसे आपको समझना आपका कर्तव्य है। कभी कभी माताएं क्या करते हैं, वो अगर कोई लड़का ज्वाइन कर लिया आश्रम, वो ब्रह्मचारी का मां रोती है, ये भी साथ में रोते हैं उसके साथ। तो आप लोग, आपको बोलना चाहिए ये ब्रह्मचारी को ही ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमको भी ऐसा बनना चाहिए। पति पत्नी को धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आप भागवत पढ़िए, पृथु महाराज और अर्ची क्या क्या उन्होंने आप पढ़िए, मलय ध्वज और विदर्भ वैदर्भी आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया आप पढ़िए, युधिष्ठिर महाराज पंच पांडव और द्रौपदी कुंती उन्होंने क्या किया आप पढ़िए, धृतराष्ट्र और गांधारी उन्होंने क्या किया आप पढ़िए। ये सब हम दूसरे कुछ उपनिषदों से नहीं बोल रहे हैं, किधर से बोल रहे हैं, भागवत में है ये सब चीज। अगर भागवत में बताया है तो ये वैष्णव के लिए ही बोला गया है। प्रभु ने बोला वैष्णव जीवन में वानप्रस्थ का मतलब है हम पति पत्नी मैथुन जीवन को त्याग कर पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में लग जाना, ये वानप्रस्थ है। आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस्कॉन मंदिर में जुड़कर सुबह आइए, दिन में सेवा कीजिए, शाम को वापस जा सकते हैं, नहीं तो मंदिर में 1 हफ्ते 2 हफ्ते रह सकते हैं। ऐसे जुड़कर जितना आप सेवा करेंगे, आप ब्रह्मचारी जैसे कर सकते हैं, आप भी, आपके अंदर भी ऐसी क्षमता है। और ये कितना अच्छा है, अनेक लोग 99% लोग गृहस्थ बनते हैं, लेकिन उनको भी वही गति प्राप्त हो सकता है जो सन्यासियों को ब्रह्मचर्यों को प्राप्त होता है। वही गति उनको प्राप्त हो सकता है जब वो सही ढंग से अपने जीवन को चलाकर सही उम्र पर 50-60 उम्र में अपने सर्वस्व को भगवान को त्याग करे। इस तरह प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं, उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं दे बिकम ट्रेन्ड गृहस्थास, वो बिकम वो प्रशिक्षित गृहस्थ बनते हैं और वो अपने हमारे मिशन को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। ब्रह्मचारी लोगों को मना है, कॉलेज के अंदर हम नहीं जा सकते हैं, कंपनी के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग जाकर ऐसी सेवाएं कर सकते हैं जो ब्रह्मचारी नहीं कर सकते हैं। तो आज के प्रवचन में मैंने जो भी बोला उसमें आपको जो कुछ बुरा लगा होगा, कुछ अपराध लगा होगा, माफ क्षमा कीजिए, हम क्षमा याचना करते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है प्रहलाद महाराज की, प्रभुपाद जी इस शिक्षा को बार बार बोलते थे, इसलिए शायद आपको पहले मालूम भी होता है इसके बारे में, फिर भी मैंने वापस दोहराया मैंने, क्योंकि ये ज्ञान जो है हम सबको बार बार याद करना आवश्यक है। श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की और भक्तवृंद की हरे कृष्ण, थैंक यू।